الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ہجری جب حج کا حکم آیا، حج فرض ہوا، تو پہلے سال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر صحابہ کو حج کے لیے بھیجا. 9 ہجری کو حج فرض ہوا تو پہلے سال جو صحابہ حج کے لیے گئے ان کے امیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بنے. اس میں بہت حکمتیں تھیں. ایک حکمت تو یہ تھی کہ پہلے مسلمان اور کافر سب حرم میں آ جا سکتے تھے، مگر اس موقع پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی جن میں مشرکین کو منع کر دیا گیا کہ وہ حرم میں داخل نہ ہوں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم لے کر بعد میں اس قافلے کو آ کر ملے اور انہوں نے یہ بات بتائی. پھر اس حج پر ایک اعلان کیا گیا کہ سرداران قریش ہر سال حج کے وقت کو بدل دیا کرتے تھے. بنیادی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں ایک میلہ لگتا تھا جسے عکاظ کا میلہ کہتے ہیں، اور عرب کے سارے لوگ 10-15 دن کے لیے اس میلے میں چلے جایا کرتے تھے. ان کی زندگیوں میں وہ ایک بڑا ایونٹ ہوا کرتا تھا، سب قبائل شرکت کرتے تھے. میلے کے لیے ایک خاص موسم کا ہونا ضروری، کیونکہ اگر کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بارش، کبھی کچھ اور، تو میلے میں خلل آتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر یہ اپنے دن بدل دیتے تھے، موسم وہی رکھتے تھے. اب چونکہ قمری سال اور شمسی سال میں فرق ہے، ہر سال 10 دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے سرداران قریش ہر سال 10-11 دن کا فرق ڈالتے رہتے تھے، موسم وہی رہتا تھا ان کا. چنانچہ ان کا حج ان کے میلے کا تابع تھا. عکاظ کا میدان چونکہ عرفات سے کچھ میل آگے کی طرف ہے، جدھر جنگ حنین ہوئی، تو جب یہ میلہ ختم کرتے تو واپسی پر یہ حج کے ارکان کر لیا کرتے تھے کہ پہلے میلے میں وقت گزار لو، اور جب وہاں سے واپس آنے لگو مکہ مکرمہ تو پھر منا میں اکٹھے ہو کر حج کے اعمال کر لو. یہ بھی عجیب بات ہے کہ سرداران قریش وقوف عرفہ نہیں کیا کرتے تھے، انہوں نے حج میں سے وقوف عرفہ کو ختم کر دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ جو حرم کی حدود ہیں، حرم محترم خاص، اس کی شان زیادہ، اور یہ مقام میقات کے اندر ہے مگر حرم سے باہر ہے، इसलिए ये कहते थे कि वहां की अहमियत बढ़ने से हरम की अहमियत कम हो जाएगी। ये सरदाराने कुरैश की लॉजिक थी, इसलिए वो कहते थे कि हम मस्जिद हराम के मुतवल्ली हैं, लिहाजा हम मस्जिद हराम और इसके गिर्द की जगह को सबसे आला समझते हैं। तो ये वकूफ अरफा नहीं किया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वकूफ अरफात के बारे में बतला दिया था, लिहाजा हिजरत से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने जो हज किए आप अपने ऊंट पर अरफात भी तशरीफ ले जाते थे वकूफ के लिए। अब इस पर मुहद्दिसीन ने काफी तफसील लिखी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत से पहले कितने हज किए। बाज ने कहा तीन किए, बाज ने कहा दो किए, लेकिन जिस बात पर उलमा का इजमा हुआ वो ये कि दो हज किए। ये वही दो हज थे जिनमें मदीना के अंसार हजरात ने आकर बैत की थी, बैत उकबा उला और बैत उकबा सानी। तो ये दो हज यानी हिजरत से पहले हुए। अलबत्ता जब आपने हिजरत फरमा ली तो उसके बाद मदीना तैयबा से आप नहीं तशरीफ लाए। 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने पहले साल सिद्दीक अकबरानों को भेजा। उसकी वजह यह थी कि कुछ ग्राउंड प्रिपरेशन की जरूरत थी। अरब के लोग जमाने जाहिलियत में तवाफ करते थे तो इनके जिस्म पे कपड़े भी पूरे नहीं होते थे, तो सिद्दीक अकबरानों ने आकर इन तमाम नाजायज चीजों के खत्म होने का ऐलान फरमा दिया। अब माहौल बिल्कुल सही हो गया तो 10वीं हिजरी में नबी अलैहिस्सलाम खुद हज के लिए तशरीफ ले आए। जब आपने हज के इरादे का इजहार फरमाया तो मदीना तैयबा के लोगों में तो खुशी की लहर दौड़ गई, मगर अल्लाह की शान देखें कि जिन दिनों हज की तैयारी हो रही थी मदीना में चीचक की वबा फैल गई और बहुत सारे सहाबा बीमार हो गए और बीमारी की वजह से मजबूर थे, माजूर थे, साथ आ नहीं सकते थे। जिनको अल्लाह ने चाहा वो साथ निकले, ताहम जब निकले तो 45,000 के करीब सहाबा की तादाद थी। फिर रास्ते में करीब के जो बस्तियां थीं या कबीले रहने वाले थे वो आकर काफिलों की शक्ल में मिलते रहे, हत्ता के जब हज का मौका हुआ तो मैदान अरफात में तकरीबन 1,24,000 सहाबा थे। नबी अलैहिस्सलाम ने जब हज का इरादा फरमाया तो अपने पीछे अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, उनको मदीना का निगरान बनाया कि आप यहां रहें और जो बाकी लोग हैं बीमार हैं, कमजोर हैं, बूढ़े हैं, उनकी खबरगिरी करें। जब खुद तशरीफ ले चले तो आपके साथ सिदना सिद्दीक अकबर लानो भी थे, सैदना उमर फारूक लानो भी थे और सैदना उस्मान गनी लानो भी थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला यमन गए हुए थे, वो यमन से वहां के कुछ आदमियों को साथ लेकर आए और रास्ते में आकर मिले। नबी अलैहिस्सलाम ने इस सफर में अपनी तमाम अजवाज को अपने साथ शरीक सफर फरमाया। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा से चले और आप ज़ुल्हलीफा एक करीब जगह है वहां पर आपने पड़ाव डाला, रात गुजारी। उस रात में आपने अपनी तमाम अजवाज से मुलाकात भी फरमाई। अगला दिन हुआ तो आपने दिन में गुसल किया, तैयारी फरमाई और एहराम के लिए मुस्तकिल गुसल फरमाया, क्योंकि जब आपने गुसल वैसे फरमाया तो आयशा रजी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि मैंने आपके जिस्म पर खुशबू मली और सर के दरमियान जो मांग थी उसमें मुश्क लगाई, खुशबू लगाई। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एहराम का गुसल फरमाया यानी पानी बहा लिया और दो चादरें सफेद नबी अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल फरमाई, एक को तहबंद की तरह बांध लिया और एक को चादर की तरह लपेट लिया, ये एहराम था। अब जब वहां से निकलने लगे तो नबी अलैहिस्सलाम ने नियत फरमाई हज की। अब यहां पर एक लंबी तफसील है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज इफराद की नियत की या हज तमत्तो की नियत की या हज किरान की नियत की, इस पर बहुत सारी तफसीलात हैं। लुब्बे लुबाब यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज और उमरा दोनों की इकट्ठी नियत फरमाई, हज और उमरा दोनों की इकट्ठी नियत फरमाई, चुनाचे ये हज किरान थी जिसकी नबी अलैहिस्सलाम ने नियत फरमाई। यहीं पर जब रात गुजारी तो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हो की अहलिया अस्मा बिन्त अमीस रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनके यहां बेटे की विलादत हुई, तो मोहम्मद बिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो यहां पर पैदा हुए। अब अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के नबी, मैं तो सफर हज की नीयत से चल पड़ी और मुझे तो ये मामला पेश आ गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि तुम अपने आप को साफ कर लो, लंगोट बांध लो और एहराम की नियत कर लो। चुनाचे यहां से मसला निकला कि निफास की हालत में भी औरत एहराम की नियत कर सकती है, बल्कि रास्ते में मकाम सर्फ के ऊपर सईद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के अय्याम मखसूस आ गए तो हदीस मुबारका में आती हैं कि वो रोने लग गई। नबी साहब ने पूछा, आयशा क्यों रो रही हो? कहने लगी, तो मुझे तो नमाज ही नहीं पढ़नी और मैं आपके साथ सफर पर निकली थी कि मैं हज करूंगी और अब तो मैं हरम में दाखिल ही नहीं हो सकती। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपनी नियत उसी तरह रखो और एहराम तुम्हारा अभी रहेगा इसी तरह, ताहम तुम अभी बैतुल्ला में दाखिल नहीं हो सकती, मस्जिद हराम में तुम इंतजार करोगी। उनके दिल को जरा तसल्ली हो गई। नबी अलैहिस्सलाम 24 ज़ीक़ादा 10 हिजरी ज़ुल्हलीफा से रवाना हुए, ये जुमेरात का दिन था। हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम अक्सर व बेशतर जुमेरात के दिन सफर फरमाते थे। जो सफर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे अक्सर व बेशतर जुमेरात के दिन फरमाते थे, और अगर जुमा के दिन करना होता तो जुमा की नमाज के बाद सफर फरमाते थे और दिन के शुरू में सफर फरमाते थे, दिन के शुरू में सफर फरमाते। अब जब ज़ुल्हलीफा से ये काफिला हज के लिए रवाना हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने तलबीहा पढ़ा तो सहाबा ने भी तलबीहा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम आहिस्ता आवाज से पढ़ रहे थे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को यह पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तलबीहा को मुनासिब बुलंद आवाज से पढ़ा जाए। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम फरमाते हैं कि फिर हमने इतना तलबीहा पढ़ा कि पढ़ते पढ़ते हमारी जुबानें खुश्क हो जाती थी, मुंह खुश्क हो जाते थे, इतना तलबीहा पढ़ते थे। तो मर्दों के लिए बुलंद पढ़ना अफजल, औरतों के लिए आहिस्ता पढ़ना अफजल। ये आहिस्ता क्यों पढ़े? फितने की वजह से, कि मर्दों तक उसकी आवाज ना पहुंचे। हां, अगर कहीं कोई मर्द है ही नहीं और कोई औरत बिलफर्ज अगर ऊंची आवाज से तलबीहा अकेले में पढ़ लेती है तो शरण जाए। सफर जब शुरू हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम की जौजा सईद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो ऊंट था वो जरा तेज रफ्तार था और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद भी हल्की फुल्की थी। उसके बिलमुकाबिल हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका ऊंट जरा सुस्त रफ्तार था, और उनका वजन भी जरा ज्यादा था, तो बार बार ऐसा होता कि काफिला आगे चला जाता और उनका ऊंट पीछे रह जाता। उम्मुल मोमिनीन सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का, चुनाचे एक जगह पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कि आप हल्की फुल्की हैं और आपका ऊंट भी जरा तेज रफ्तार है और इनको मुश्किल पेश होती है साथ चलने में, तो अपना ऊंट इनको दीजिए और इनका ऊंट आप ले लीजिए। अब इस पर आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर कहा आप अल्लाह के नबी हैं, आप इंसाफ करें। मतलब ये कि एक तबई सी चीज है कि इंसान सफर में अपनी चीज क्यों किसी दूसरे को दे, भाई मुझे भी तो जरूरत है। ताहम नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये बात समझाई और ऊंट जो थे वो दोनों बदल लिए गए और इस तरह मामला आगे चला। जब रास्ते में थे तो अल्लाह ताला की शान देखें कि एक ऊंट पर नबी अलैहिस्सलाम का भी सामान था और सिद्दीक अकबर लानों का भी सामान था, ज़ादे रा इकट्ठा था, और सिद्दीक अकबर लानों का एक गुलाम था जिसके उन्होंने जिम्मे लगाया था कि इस ऊंट का ख्याल रखना, वो ऊंट कहीं गुम हो गया। अब सिद्दीक अकबर लानों ने उसे पूछा ऊंट कहाँ है, वो कहते जी गुम हो गया, तो वो तो बहुत ही गुस्से हुए और फरमाया कि एक ही तो ऊंट था, तूने उसका भी ख्याल ना रखा, और कोड़ा लेकर मारना शुरू हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया अबू बकर गुस्सा ना करो, मामलात अल्लाह की तरफ से होते हैं, मामलात अल्लाह की तरफ से होते हैं। अब देखिए नुक्ता यहां कि सफर हज में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सामान गुम हो गया। आज हमारे सफर में कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो हम पता नहीं क्या क्या समझना शुरू कर देते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को जब पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामान वाला ऊंट गुम हो गया, तो फिर एक सहाबी थे उनके पास हलवा था, अरीस था, तो वो लेकर आए और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हलवा पेश किया। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद भी खाया, साथ वालों को भी खिलाया। अल्लाह की शान देखें कि हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे और इनके जिम्मे था कि जब काफिला कहीं से चलता तो ये पीछे रहते और हर चीज की निगरानी करते थे, कोई गिरी चीज, पड़ी चीज, रह गई चीज, उसको लेकर आते थे सामान समेट कर। चुनाचे अगले दिन जब पीछे से हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हो आए तो वो सामान वाला ऊंट भी उनको मिल गया, वो उसको भी साथ लेकर आए। नबी अलैहिस्सलाम ने खुशी का इजहार फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर मेहरबानी फरमा दी और ये ऊंट हमें अल्लाह ने अता फरमा दिया। यहां पर एक बात और भी कि सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा चूंकि पीछे रह जाती थी तो वो रो रही थी, तो नबी अलैहिस्सलाम उनको खामोश करवा रहे थे और दिल लगी फरमा रहे थे, और जितना ज्यादा वो रोती अब आप और उनके साथ नरमी मोहब्बत का इजहार फरमाते तो वो और रोने लग गई। तो बिल आखिर नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उनको मना फरमाया कि भाई ऐसे तो नहीं, और खामोशी इख्तियार की। अब उस खामोशी से वो ये समझी कि शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ खफा हो गए, उनको फिक्र लग गई। तो फिक्र लगी तो वो जानती थीं कि सईद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की महबूबा भी हैं और बहुत समझदार भी हैं, तो उन्होंने उनसे बात की कि आप नबी अलैहिस्सलाम की सामने सिफारिश कर दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान जाए मुझसे। उन्होंने फरमाया कि अच्छा आज आपकी बारी है तो आज की रात मुझे दे दीजिए। ये तो एग्रीमेंट है ना आपस में, समझदार थी, उनका आज की रात मुझे दे दे, उनका मैंने आज की रात आपको दे दी। चुनाचे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने दुपट्टे को निकाला और उस पर खुशबू छिड़की और जब ईशा के बाद का वक्त हुआ तो मैंने वो दुपट्टा खुशबू वाला लिया और नबी इस्लाम के खेमे में मैंने झांक कर देखा और कहा अस्सलामु अलैकुम। नबी इस्लाम ने फरमाया आयशा आज तुम्हारी बारी तो नहीं। तो मैंने कहा ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहता है अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अब देखिए सफर भी हो रहा है और साथ साथ तालीम और तरबियत का सिलसिला भी चल रहा है। ताहम नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकरमा पहुंचे तो जी तोवा यानी मक्का मुकरमा से बाहर आपने पड़ाव डाला और फिर वहां से आप उमरा के लिए हरम शरीफ तशरीफ लाए और आला मक्का से दाखिल हुए। देखिये मक्का मुकरमा का जो मरवा साइड का इलाका है ना वो ऊंचा है, पहाड़ी है, और मिसफला साइड का जो इलाका है वो निचानवे है, इसलिए उसको मिसफला भी कहते हैं। तो इसको असफले मक्का कहते हैं और उसको आला मक्का कहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम जब दाखिल हुए तो आला मक्का की तरफ से दाखिल हुए और उसकी एक और वजह भी है कि नबी अलैहिस्सलाम का अपना जो घर मुबारक था वो भी आला मक्का की तरफ था, मौलिदुन नबी जहां आपकी विलादत मुबारक हुई, या सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर वो भी उसी तरफ था। तो आदमी जब भी किसी शहर में लौटता है तो जिस तरफ अपना घर हो, यादें हो, उधर जाने को ज्यादा जल्दी दिल करता है। तो नबी अलैहिस्सलाम वहां से दाखिल हुए और मक्का मुकरमा में जिस दरवाजे से दाखिल हुए उसे बाबुस्सलाम कहा जाता था। तो आप बाबुस्सलाम से मस्जिद में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरा फरमाया। लेकिन हदीस पाक में आता है कि चूंकि नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह से दूर थे मदीना तैयबा में, तो दिल तो तड़पता है ना अल्लाह के घर के लिए। तो नबी अलैहिस्सलाम की जब पहली निगाहें बैतुल्लाह पर पड़ी तो आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, आपने गिरिया फरमाया, अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत ऐसी थी। अल्लाह अकबर। चाश्त का वक्त था, नबी अलैहिस्सलाम ने तवाफ फरमाया। इस तवाफ में नबी अलैहिस्सलाम ने इज्तबा भी किया और रमल भी किया। इज्तबा कहते हैं कि एहराम दाएं कंधे से नीचे ले लेना, दाएं कंधा मर्दों का नंगा रहे, और रमल कहते हैं कि तवाफ के पहले तीन चक्रों का हिम्मत के साथ जैसे पहलवान चलते हैं इस तरह चलना, कदम छोटे छोटे हो, दौड़ना नहीं होता इसमें लेकिन हिम्मत से चलना होता है। ये हिम्मत से चलना क्यों भाई, इसकी भी एक तारीख है कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर कुरैश मक्का ने कहा कि इस वक्त जो लोग आए हैं उमरा करने की नियत से ये वापस चले जाएं, एहराम खोल दें और फिर अगले साल दोबारा उमरा करने के लिए आए तो हम करने देंगे, और नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर सुलह फरमा ली, एग्रीमेंट हो गया। तो जब अगले साल उमरा के लिए आए तो कुरैश मक्का देख रहे थे, उनको पता था कि मदीना में कई मर्तबा बीमारियां भी आ जाती हैं, तो उनमें से एक मुशरिक ने कह दिया कि देखो ये तुम्हारे दोस्त भाई मदीना से आए हुए, यसरब से आए हुए, बुखार ने इनको कमजोर करके रख दिया। ये अल्फाज उसने कह दिए कि बुखार ने इन सब को कमजोर करके रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तवाफ के पहले चक्कर जो थे वो जरा जोश के साथ, जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ लगाए। अल्लाह ताला को महबूब की अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने उसको तवाफ का हिस्सा बना दिया। उसके बाद से फिर जब भी ऐसा तवाफ होता था जिसके बाद सही करनी हो उसमें रमल किया जाता था। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के इस उम्रे के तवाफ में भी रमल फरमाया और बाकी चार चक्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम के साथ किए। जब तवाफ हो गया तो नबी अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहिम के महाज में आए और आपने दो रकत दोगाना तवाफ के अदा किए, दुआ मांगी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जमदम पर आए तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी का डोल पेश किया गया। नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर मुझे ये डर ना होता कि लोग इसे हज का एक हिस्सा समझ लेंगे, मैं खुद डोल निकालता पानी का। खुद इसलिए नहीं निकाला कि लोग इसे हज का अमल ना बना लें। ताहम नबी अलैहिस्सलाम को जब पानी का डोल पेश किया गया, हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस डोल में से कुछ पानी नोश फरमाया और जो बच गया उस पानी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी कुएं के अंदर वापस डाल दिया। चुनाचे उस पानी के वापस डालने की बरकत यह है कि आज जो भी हाजी हज के लिए आता है जमजम पीने का शर्फ भी पाता है, नबी अलैहिस्सलाम का झूठा पानी पीने का भी शर्फ पा लेता है। क़यामत तक के लिए हज उमरा पे आने वालों को सआदत दे दी। सुभान अल्लाह, महबूब की शफकत देखिए, रहमतुल्लिल आलमीन ही देखिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वालों को भी इस नेमत से महरूम न होने दिया। अल्लाह अकबर कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत असद को भी बोसा दिया और हजरत असद पर सहाबा भी मौजूद थे। हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उमर लानो को बुलाकर कहा कि उमर तुम हिम्मत वाले और कवि नौजवान हो, अगर हजरत असवद को बोसा देना हो तो तुम जोर आजमाई न करना। तो उमर लानो को नबी अलैहिस्सलाम ने बिलखसूस ये बात कही, इससे अंदाजा ये होता है कि इस बात से पहले सहाबा बोसा लेने में गो एक दूसरे की रियायत करते होंगे मगर हिम्मत से काम तो लेते होंगे ना, तभी तो फरमाया कि जोर आजमाई न करना। चुनाचे उसके बाद सहाबा लानुम बोसा लेने के लिए जोर आजमाई नहीं किया करते थे, अगर करीब होते तो बोसा ले लेते, दूर होते तो इस्तलाम कर लिया करते थे। बाद साहब ऐसे थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमरा किया और उमरे के बाद उन्होंने एहराम नहीं खोला, जिनमें हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर लानो, हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत ज़ुबैर, इन्होंने भी गोया हज किरान किया, बाकी सहाबा ने हज एहराम को खोल लिया था। नबी अलैहिस्सलाम, इसी हदीस से एक बात और भी सामने आती है कि नबी अलैहिस्सलाम जब पहली मरतबा तशरीफ लाए और आपकी नजर बैतुल्ला पर पड़ी तो हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ मांगी। तो जैसे हम लोग जाते हैं बैतुल्ला में, बिलखसूस जब उमरे के एहराम ये बांध के, तो फिर बैतुल्ला को देख के दुआ मांगते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल इसी तरह हाथ उठाकर दुआ मांगी, बाकी सहाबा ने भी दुआ मांगी। नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा 4 दिन ठहरे रहे, तो गोया रात को आप बाहर चले जाते थे जीतवा में, खेमों में, और दिन में आप हरम में आ जाते थे, वहां वक्त गुजारते थे। 4 दिन नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह गुजारे। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने इस दौरान मक्का मुकरमा में अजान भी दी थी। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने हजरे असवद के करीब खड़े होकर खुतबा भी दिया और हदीस पाक में आता है कि उस खुतबा में आपने अलामात क़यामत को तफसील के साथ बताया, तफसील के साथ अलामात क़यामत आपने बताई। हत्ता के जुमेरात का दिन आ गया, जुमेरात के दिन नबी अलैहिस्सलाम इशराक के वक्त मीना की तरफ रवाना हुए। आपने दोबारा एहराम बांध, आपका तो एहराम था ही सही, जिन सहाबा का नहीं था उन्होंने फिर बांध लिया, और ज़ीतवा से किस तरफ चले, मीना की तरफ चले गए। नबी अलैहिस्सलाम जब चले तो बिलाल जलानो भी साथ थे और एक चादर के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर रहे थे। उसामा रजी अल्लाह तआला ने उन्होंने नबी इस्लाम की ऊंटनी की नुकेल पकड़ी हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में मिना पहुंचे। मिना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर असर मगरिब इशा और अगले दिन फजर की 5 नमाजें अदा फरमाई, चुनाचे ये सुन्नत बन गई। हम लोग भी 8 जिलहज्जा को एहराम बांधेंगे और एहराम बांधने से पहले नाखून कटवाकर बाल कटवाकर तैयारी करके नहा के एहराम बांध के फिर यहां से हम मिना पहुंचेंगे जोहर से पहले। अगर कोई बंदा किसी रुकावट की वजह से जोहर से पहले जवाल से पहले न जा सके तो कोशिश ये करे कि जब भी वो पहुंचे जोहर वहां पड़े, और अगर बिलफर्ज जोहर भी उसको न मिल सकी तब भी उसका हज हो जाएगा, गो एक सुन्नत पर वो अमल न कर पाया। हत्ता कि अगर कोई सफर में पीछे रह गया और वो मिनान पहुंच भी नहीं सकता तो वो सीधा अगले दिन अरफात चला जाए वकूफ के लिए, एहराम उसका हज फिर भी हो जाएगा। लेकिन सुन्नत तरीका यही है और इसी में अजर ज्यादा है कि हम पहले पहुंचें और 5 नमाजें वहां अदा करने की कोशिश करें। यहां ये नुक्ता ज़हन में रखें कि मुअल्लिम हजरात के लिए इतनी तादाद में हाजियों को पहुंचाना एक शरई उजर है, लिहाजा उनको वक्त लगता है, तो वो कुछ लोगों को रात को ही पहुंचा देते हैं, कुछ को सुबह के वक्त, तो उसमें आए बाएं शाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो उल्टा और ज्यादा मुश्किलात में मुसीबत में फंस जाएंगे। अकेला बंदा तो जा ही नहीं पाता, गुम हो जाता है, औरतें साथ हों तो और मसला होता है। तो नीयत का सवाब पाएं और मजबूरी के साथ जो अमल हो वो आप कर लें, नीयत का सवाब मिल जाएगा। नीयत दिल में यही रखें। अब मिना के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने रात बसर फरमाई, ये रात शबे जुमा की रात थी। इस रात में सूरह अल मुरसलात नाजिल हुई मिना के अंदर। अगला दिन जुमा का दिन था, चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराफात की तरफ तशरीफ ले गए। अराफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर असर को इकट्ठा अदा फरमाया और फिर वहां पर वकूफ फरमाया, दुआएं की, खुतबा भी दिया नबी अलैहिस्सलाम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ऊंटनी पर सवार थे। उम्मुल फजल रजी अल्लाह तआला ना एक सहाबिया हैं, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को दूध पेश किया, तो सहाबा के सामने नबी अलैहिस्सलाम ने दूध नोश फरमाया। इससे पता चलता है कि अराफात के दिन नबी अलैहिस्सलाम का रोजा नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम ने जब खुतबा देना चाहा तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सहाबा कहते हैं कि हमने ऊंटनी को कांपते हुए, उसकी टांगों को कांपते हुए देखा, चूंकि सिकल की वजह से, बोझ की वजह से उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। चुनाचे नजद के कुछ लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम से हज के बारे में पूछा तो नबी इस्लाम ने फरमाया, अल हज अल आराफा, कि ये जो वकूफ आराफा है इसी का नाम हज है, लिहाजा वकूफ आराफा हज का रुकन आजम है, उसके बगैर हज हो ही नहीं सकता। जिसका वकूफ आराफा कजा हो गया वो समझ ले कि उस साल का उसका हज भी कजा हो गया। نبی علیہ السلام نے اس دن جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں باہمی حقوق کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ توجہ فرمائی اور فرمایا کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہارے عزتیں ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح حرام ہیں، حرمت والی ہیں، عزت والی ہیں، جس طرح آج کا دن اور یہ جگہ حرمت والی ہے. پھر فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے، وہ تمہارے پاس امانت ہیں اور تم امانت کا خیال کرو. عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، اس کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو بہرحال یہ جو حجت الوداع کا خطبہ تھا یہ ایک ایسی نصیحت تھی جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کہا جا سکتا ہے. اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اللہ تعالی کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب نے کہا کہ آپ نے نصحت الامہ، امت کو نصیحت کر دی، وعدیت الامانہ، اور آپ نے امانت کو پہنچا دیا. جب سب نے کہا کہ امانت کو پہنچا دیا تو نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا اللہم اشہد، اے اللہ اس پہ گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا پیغام آپ کے بندوں تک پہنچا دیا. یہ کتنی عجیب بات ہے. نبی علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں نہیں پوچھا تھا، دن کی روشنی میں پوچھا. جو مقصد میں لے کے آیا تھا کیا اس مقصد کو پورا کر دیا؟ اور لوگوں نے تصدیق کی، 124,000 لوگوں نے کہ آپ نے وہ مقصد پورا کر دیا. آپ تاریخ انسانیت کو پڑھ کر دیکھ لیں، کائنات میں ہر بندے کی زندگی آپ کو ادھوری نظر آئے گی. کوئی بڑا وقت کا بادشاہ مرے گا، لوگ کہیں گے جی بڑے اچھے کام کیے، اگر اس کی زندگی وفا کرتی تو اور بھی اچھے کام کرتا، یعنی گویا ادھوری زندگی گزار کے مرا. کوئی بڑا مصنف مرا، لوگوں نے کہا جی بڑا اچھا عالم تھا، اتنی کتابیں لکھی، اگر زندگی وفا کرتی اور بھی کتابیں لکھتا، گویا ابھی ادھورا کام کر کے مرا. سائنسدان مرا، او جی بڑا سائنسدان تھا، کیا کیا اس نے ریسرچ کی، اگر زندگی وفا کرتی تو اور بھی ریسرچ کرتا، اس کا مطلب ہے ادھوری زندگی. تو جس بندے کو بھی دیکھو اسی کی ادھوری زندگی نظر آئے گی. تاریخ انسانیت میں ایک نبی علیہ السلام کی مبارک ہستی ہے کہ جس نے کامل زندگی گزاری. فرمایا میں جس مقصد کے لیے آیا تھا میں نے مقصد کو پورا کر دیا اور لوگوں نے اس کی تصدیق کر دی. تو بھائی جب کسی کو اپنا بڑا ماننا ہے، قائد ماننا ہے، تو ادھوری زندگی والوں کو کیوں مانے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد بنائیں جن کی کامل اور پوری زندگی تھی. چنانچہ جب یہ آیت اتری تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو سن کر رونے لگ گئے. اس دن اللہ کی شان دیکھیں کہ یہود کے لیے بھی عید کا دن تھا، نصارہ کا بھی عید کا دن تھا، مجوسیوں کا بھی عید کا دن تھا، تمام اہل ملل کی عیدیں ایک دن میں اکٹھی ہو گئیں، اور مسلمانوں کے لیے تو جمعہ کا دن ویسے ہی عید کہلاتا ہے. اور وہ جو وقت کا فرق تھا نا، جو قریش مکہ ڈالتے تھے ہر سال، تو وہ اس سال آ کر پورا ہو گیا تھا، اور اس سال کا حج اپنے اصل وقت کے اوپر ہوا تھا. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد حج کا مطلب کو کوئی نہیں بدل سکتا، یہ اپنے وقت پر ہوتا رہے گا. چنانچہ اس وقت سے یہ حجت الوداع کا موسم اپنے وقت پہ آتا ہے. نبی علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں اور مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا. مغرب کے وقت آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا कि यहां नमाज कोई ना पढ़े, यहां से कूच करें और नमाज मगरिब और इशा मिलाकर इशा के वक्त में मुजदलफा में पढ़े। ये भी अल्लाह की शान है, अल्लाह ताला चाहते हैं तो दिखा देते हैं कि देखो हमने कहा अपने वक्त पे नमाज पढ़ो, तुम्हारे लिए अपने वक्त पे पढ़नी जरूरी। अरफात में हमने कहा कि तुम असर को जोहर के वक्त में पढ़ो मिला के, तुम पहले अदा कर रहे हो हुक्म हमारा पूरा। फिर हमने कहा कि मगरिब को इशा के वक्त में ताखीर करके पढ़ो, तुम ऐसा कर रहे हो तो हुक्म हमारा पूरा हो रहा है। अल्लाह ताला ने तीनों सूरतें करके दिखा दी, हम चाहें तो पहले पढ़वा लें, चाहें तो वक्त पे पढ़वा लें, चाहें तो वक्त के बाद ताखीर करके पढ़वाएं, हुक्म किसका चलेगा? उस परवरदिगार का चलेगा। चुनाचे मैदान अरफात में सबसे बड़ा काम दुआ मांगना, इसी को वकूफ कहते हैं और यही हज है। बस यूं समझें कि हर हाजी को अल्लाह ताला ने एक ब्लैंक चेक दे देना है और ये कहना है कि भाई मैदान अरफात में अपने खुशू खुजू जारी तवाजो इनकिसारी के जरिए मांगने के जरिए इस चेक को लिखो। अब उस पर कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, जो हिम्मत वाले होंगे वो हिम्मत लगा के माशाल्लाह इतना लिखेंगे जितना अल्लाह ताला की शान है, हर बंदे को उसके मांगने के मुताबिक अता कर दिया जाएगा। तो ये ज़हन में रखना, हमने देखा है कि यहां पर कोताही होती है, क्या कि लोग अरफात जिस रात जाना होता है वो पूरी रात सोते नहीं है शौक में, जी कल अरफात जाना है, सारी रात जाग के गुजार देते हैं। अब जब सारी रात जाग के गुजार दिया तो उनको उन्होंने अरफात पहुंचाया दिन में 10 बजे 11 बजे 12 बजे, गर्मी भी है प्यास भी है थके हुए भी हैं, लिहाजा उनको वहां जाके जोहर पढ़ के नींद आ जाती है, दो घंटे घंटा तीन तीन घंटे लोग सोते रहते हैं। वो वकूफ का वक्त जिसकी खातिर इतना खर्चा करके मुशक्कतें उठा के हम यहां पहुंचे, अब उस चंद घंटे की कितनी अहमियत होनी चाहिए। अच्छा आप सोचें कि अगर एक बजे फर्ज करो जोहर और असर वो अदा कर लेते हैं और आजकल 5 बजे मगरिब हो जाती है तो कितने घंटे बने जी? 4 घंटे। अब 4 घंटे में से अगर हम सोते हुए टाइम गुजार दें तो बाकी क्या बचेगा भाई? मालूम हुआ कि इस साल हमारा हज के वकूफ का वक्त बड़ा थोड़ा है। ये तो ऐसा ही है बच्चा जाए कमरे इम्तहान में पेपर देने की बजाय वहां जाके सो जाए, वो कैसे पास होगा भाई? तो ये नुक्ता जहन में रखें कि मिना की रात अगरचे बड़े अल्लाह के यहां मकाम वाली रात है, आप इशा के बाद थोड़ी इबादत करें और फिर सो जाएं, और जब तहज्जुद के वक्त उठें फजर से थोड़ा सा पहले उस वक्त चंद नफल पढ़ लें, बाकी रात आराम करें, अपने आप को आप उसके लिए तैयार रखें कि मैंने कल अरफात में जाकर वकूफ करना है। अच्छा बाज लोगों को देखा कि मौलिम हजरात उनको फजर के वक्त ही वहां पहुंचा देते हैं, तो किसी को 8 बजे पहुंचा दिया किसी को 9 बजे, तो भाई जाते ही वहां आप सो जाएं, इसलिए कि अभी तो वकूफ शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन 9 बजे से लेके 1 बजे तक शैतान गप्पे लगवाएगा, अरफात में पहुंच गए हैं बातें हो रही हैं गप्पे लग रही हैं, उसको पता है कि अब वकूफ अभी शुरू नहीं हुआ, अभी गप्पे लगवाओ और इनको जगाओ, और जैसे ही वकूफ का वक्त शुरू होगा तब नींद गालिब करेगा। आप भी स्मार्ट बने, इस बदबख्त के मकर को समझे। लिहाजा जब अल्लाह ताला आपको वहां जल्दी पहुंचने की तौफीक दे तो आप आराम करें, पक्का सो जाएं, आराम करें तसल्ली के साथ, इसलिए कि वहां पर जो असल वकूफ का वक्त है वो जोहर के बाद शुरू होना है। खाना खाने पहले खा लो, वुजू करने पहले कर लो, वरना होता क्या है कि पहले ऐसे ही रहते हैं और कुछ लोगों को वो जोहर के बाद सुला देता है और बाकी लोगों को जोहर के बाद भूख लगा देता है। अब भूख लगाने वाले जो लगनी जिनको भूख लग रही है वो कहते हैं खाना दो, है वकूफ का वक्त और खाना। और बाद औरतें जो उस वक्त खाना तलब करती हैं उनके खावन बेचारे धूप में खाना तलाश कर रहे होते हैं, वो अल्लाह मियां से बैठी खाना मांग रही होती हैं वकूफ के वक्त में, और उनके खावन बेचारे धूप में खाने की तलाश में फिर रहे होते हैं, और शैतान हंस रहा होता है कि देखा मैंने कैसे इनके साथ आज किया, इतना मेहनत करके यहां पहुंचे और मैंने इनको सही वक्त अवेल न करने दिया। तो ये ऐसा नुक्ता है जिसको अच्छी तरह समझने की जरूरत है। अच्छा, बाद लोगों को देखा कि ऐन वकूफ के वक्त में टेलीफोन ऑन है और बाहर से कॉलें आ रही हैं। अब लोग कह रहे हैं हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए करना, और ये उनके साथ गप्पे भी लग रही हैं और हाल अवाल भी हो रहे हैं। जो खुशू खुजू तवज्जो के साथ अल्लाह की हुजूरी में वक्त गुजारना था वो नहीं गुजार पाते। तो भाई कोशिश करें कि कम अज कम वकूफ के वक्त में अपने टेलीफोन बंद कर दें, इस मुसीबत से जान छुड़ाएं। उस वक्त आप हो और आपका परवरदिगार हो। गिर पड़ के यहां पहुंचा, मर मर के यहां आया है? गिर पड़ के यहां पहुंचा, मर मर के यहां आया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जान आना। अल्लाह मैं आपका अब दरवाजा तो नहीं ना छोड़ना चाहता, इतनी मुश्किल से यहां पहुंचा हूं। तो वकूफ के चार घंटे आप समझिए कि हक और बातिल की गेम शुरू हो गई। शैतान पूरा जोर लगाएगा हमें इधर उधर मुतवज्जे रखने में ताकि ये दुआएं ना मांग सके। बस 5 मिनट दुआ मांगी, दिल भर गया नहीं, अल्लाह करे कि हम 4 घंटे पूरे ही दुआएं मांगे अल्लाह से। अच्छा, इसमें कुछ अजकार हैं, कुछ दुआएं हैं जो मुख्तलिफ कुतुब के अंदर मनकूल हैं, और वो कुतुब मिल जाती हैं। जो हज की तैयारी है ना, उस तैयारी में एक तैयारी ये भी है कि उन सफों को फोटोकॉपी करवा के या उन किताबों को अपने साथ रख लें ताकि अरफात के मैदान में आप दुआएं मांगे। आम तौर पर अरफात के मैदान में शुरू में इनफरादी दुआओं का मौका दिया जाता है। जोहर की नमाज जो लोग खुतबा सुने और इमाम के पीछे पढ़ें मस्जिद निमरा में तो वो तो जमा करेंगे बैन सलातैन, और जो अपने अपने खेमों में हों और अपने अपने खेमों में रहें उनको चाहिए कि जोहर के वक्त में जोहर पढ़ें और असर के वक्त में असर पढ़ें, अगरचे जमात के साथ पढ़ रहे हों खेमे के अंदर। तो आम तौर पर तरतीब ये होती है कि हम जोहर की नमाज पढ़ के इनफरादी दुआओं का वक्त देते हैं, जब असर की नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद कोई 1.5 घंटा 1.25 घंटे इतने मगरिब में बाकी होते हैं, उस वक्त फिर इज्तिमाई तौर पर कुछ देर के लिए बयान भी कर देते हैं ताकि सबके दिल में जज्बात उभरें और अल्लाह की मोहब्बत बढ़े, वक्त की कदर कीमत आए। ये तरगीब और तहरीस जो होती है ना, फज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, ईमान वालों को फायदा देती है। और फिर उसके बाद इज्तिमाई दुआ भी होती है, और ये इज्तिमाई दुआ भी कोई 20 मिनट आधा घंटा पहले खत्म कर दी जाती है गुरूब से, ताकि लोग फिर आखिर पर आधा घंटा फिर अपनी इनफरादी दुआएं मांग सकें, जो पहले नहीं मांग सके उनको बाद में फिर मौका मिल जाए। तो ये जो 4 वक्त हैं हमारे हज का, सबसे अहम तरीन वक्त ये होगा। कोशिश करें कि खाना जोहर से पहले पहले ले लिया जाए, और जैसे एक दिन का इंसान रोजा रख लेता है तो चलो कुछ मशरूबात पी लिए और बाकी वक्त वैसे ही भूख में गुजार लिया, कोई हर्ज नहीं। और यह भी देखा कि बसा औकात खाना पीना और वुजू ज्यादा करें तो लोग गुम भी हो जाते हैं वहां, چونکہ عرفات کے میدان میں خیمے ایک جیسے ہی سارے ہوتے ہیں اور گم بڑا جلدی ہوتا ہے بندہ، خاص طور پہ جو خیمے سے باہر سڑک پہ نکل گیا وہ تو جلدی گم ہو گیا، تو کوشش کریں کہ بس اس وقت میں ایک ہی جگہ رہیں اور وہیں. بعض دفعہ یہ بھی پیش آ جاتا ہے، چونکہ ہر قسم کی بات بتانی چاہیے، ایک ہی خیمے کے ایک ہی جگہ کے لوگ ہیں، کچھ لوگ تو اپنے خیمے پہ پہنچ گئے اور کوئی بس خراب ہو گئی. اب یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، اب جن کی بس خراب ہوئی وہ خیمے میں پہنچ نہیں سکتے اور اوپر سے بھیڑ ہو جاتی ہے اور اتنی بھیڑ کے پھر بس آگے جا ہی نہیں سکتی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا موقع پیش آ جائے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جہاں بھی ہوں، کوئی پاس ہے یا نہیں، کھانا ملا یا نہیں، نیند ملی یا نہیں، ظہر سے لے کے مغرب تک آپ نے دعائیں مانگنی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، باقی چیزیں سب بعد میں ہوتی رہیں گی. پھر گروپ بھی مل جاتا ہے، پھر بسیں بھی مل جاتی ہیں، پھر بندہ مل بھی لیتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. اس وقوف کے وقت کو آپ ادھر ادھر ضائع نہ ہونے دینا، وہ آپ کا پرائم وقت ہے، اور اس میں دعائیں مانگیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کو تین تین مرتبہ مانگا کرتے تھے، ہم اس سے بھی زیادہ مانگیں، بار بار مانگیں. اللہ تعالی سے مانگنا ہے، جی بھر کے مانگیں، جی کھول کے مانگیں، اور اپنی زبان میں مانگیں، اس لیے کہ اللہ تعالی ہر زبان کو جانتا ہے، ہر زبان والے کی دعا کو سنتا ہے وہ، اور پروردگار قبول کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شیطان کو کبھی اتنا ذلیل و رسوا ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ عرفات کے دن اس کو رسوا ہوتے دیکھا. سر پہ مٹی ڈالتا ہے، کہتا ہے میری سالوں کی محنت ضائع ہو گئی. شیطان روتا ہے، اللہ اور اللہ کے بندے خوش ہوتے ہیں، بندے اپنے اللہ کے ساتھ سلو کرتے ہیں. اللہ تعالی کی رحمت اس دن جو بن پہ ہوتی ہے، ہم نے دفتروں میں دیکھا، یہ جو کلرک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں کلرک بادشاہ. اصل تو یہ ہوتے ہیں نا، فائلیں ساری آگے پیچھے موو کرنے والے، جس فائل کو چاہی بریک لگا کے سرد خانے میں ڈال دیا، اور جس فائل کو چاہا پہیے کی بیرنگ فٹ کر کے اس کو آگے بھگا دیا. تو یہ کلرک بادشاہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، یہ آتے ہی نا دفتر میں افسر کا موڈ دیکھتے ہیں. جس نے دیکھیں کہ آج لگتا ہے کہ خوش باش اور بڑا اکثر ریلیکس موڈ میں ہے، اس دن چار فائلیں دیتے ہوئے درمیان میں دو اپنی مرضی کی بھی ڈال دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے آج یہ سائن کرتا چلا جائے گا. تو اچھے موڈ کو دیکھ کر اپنے کام کروا لیتے ہیں. یاد رکھنا، اللہ رب العزت کی رحمت میدان عرفات کے وقوف کے وقت اپنے جوش پہ ہوتی. اب بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے مانگ لیں جو مانگتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا پرائم وقت ہوگا. زندگی کے گناہ معاف ہوں گے، دن دو دن کی بات نہیں ہے، زندگی کے گناہ معاف. ایک مرتبہ اللہ نے مسکرا کر دیکھ لیا، سب بدبختیاں ختم ہو جائیں. تو یہ بہت اہم وقت ہوگا ہماری زندگی کا، اس وقت میں اپنے لیے مانگیں، اپنے اہل خانہ کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے مانگیں، اپنے امت کے لیے مانگیں، خوب دعائیں مانگیں. حتیٰ کہ اگر بیٹھے بیٹھے دعائیں مانگ کے تھک جائیں تو کوئی بات نہیں، لیٹ کے دعا مانگیں، اوٹ لگا کے دعا مانگیں. بیٹھ کے تھک جانے کا یہ مطلب نہیں کہ دعا ختم کر دیں، یہ ذہن میں رکھیں، دعا کرتے رہنا ہے. بیٹھ کے کریں گے، کھڑے ہو کے کریں گے، لیٹ کے کریں گے، مولا ہم ہر حال میں، زبان تھک جائے گی تو بن زبان چلائے دل سے دعا مانگیں گے، لیکن اس وقت میں ہے مانگتے رہنا، بس یہ ذہن میں رکھنا. خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت کو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے میں. اچھا، بعض احباب اس وقت تلاوت شروع کر دیتے ہیں، بھئی تلاوت بہت اچھا عمل، لیکن وہ وقت وقت دعا ہے. तो इसलिए बेहतर ये होगा कि दुआ मांगें जितना मांग सकते हैं। और ये ध्यान में रखें कि मुसाफिर की दुआ नबी इस्लाम ने फरमाया कबूल होती है, और इस हदीस पाक में ये कहीं नहीं फरमाया कि नेक मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, फकत मुसाफिर का। तो जब मुसाफिर की दुआ कबूल होती है तो मुसाफिर तो हम भी होंगे ना भाई। है अल्लाह, आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि मुसाफिर की दुआ कबूल, मुसाफिर तो हम भी हैं, अब हम पर रहमत की नजर फरमा दी। अल्लाह अकबर। और इसमें मजे की बात अजीब है, हैरान होता हूं नबी इस्लाम की रहमतुल्लिल आलमीन पे कुर्बान जाएं, आका ने क्या मेहरबानी फरमाई। हदीस मुबारका में आता है कि नबी इस्लाम ने वकूफ अरफा में एक दुआ मांगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या दुआ मांगी? ए अल्लाह, हाजी की भी मगफिरत फरमा, और जिसकी मगफिरत की हाजी दुआ करे अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हाजी की भी मगफिरत फरमा, और जिसकी मगफिरत की हाजी दुआ करे अल्लाह। इसका मतलब यह है कि हम तो सिर्फ मांगेंगे और आका की दुआ का ऊपर साया होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हाजी की भी मगफिरत फरमा, और जिसकी मगफिरत की हाजी दुआ करे अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा। तो यकीनन दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हमें यहां अपने घर में पहुंचा दिया। अल्लाह ताला का इरादा खैर का है, वो देना चाहता है, लेना हमने अपनी आजजी इनकिसारी उसके साथ है। जितना अल्लाह से मांगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रहमत का मामला फरमाएंगे। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने जोहर से लेके मगरिब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ अरफात में वक्त गुजारा, और फिर मगरिब से थोड़ा पहले आप वहां से तशरीफ ले गए, और रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजदलफा में गुजारी, और मुजदलफा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मगरिब और इशा की नमाज अदा करके क्याम फरमाया, और फजर की नमाज के बाद वकूफ किया। ये जो मुजदलफा और उससे आगे का नबी इस्लाम कहा जाए इंशाल्लाह इसकी तफसील कल बयान की जाएगी, क्योंकि नमाज का वक्त करीब है। अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए, और हमें अल्लाह ताला अपने मगफरत किए हुए गुनहगार बंदों की कतार में शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बिल अरहम, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مالک, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما, دلوں کی ظلمت کو دور فرما, دلوں کی سختی کو دور فرما. اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما, دل کی دنیا کو آباد فرما. اے مالک, آپ کے گھر حاضر ہیں, بہت دور سے آئے ہیں اور بہت دیر سے آئے ہیں. میرے مولا, آپ کے نیک بندے اپنے ساتھ نیکی اور تقویٰ لے کر آئے. ہم وہ گناہگار بندے ہیں جو گناہوں کے انبار اٹھا کے لائے. میرے مولا, ہم بڑے نادم ہیں, شرمندہ ہیں, ہم پر رحمت فرما دیجئے, ہمارے دلوں کو دھو دیجئے. اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے. حج کے جو ایام باقی ہیں, اللہ صحت عافیت سکون خوشی کے ساتھ اعمال کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تو علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین.
ख्याल रखिए।